मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। AFEIS के आज 23 मार्च 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने बायोडायवर्सिटी के बारे में कुछ जानकारियां हासिल की हैं और पिछले एपिसोड में मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की थी, खासकर प्रवणता के माध्यम से, कि किस प्रकार जो गर्म क्षेत्र होंगे वहाँ जो बायोडायवर्सिटी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। यहाँ थोड़ी सी यह बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि बायोडायवर्सिटी के बारे में जो पूरी दुनिया में इतनी गहरी चिंता व्यक्त की जा रही है, नेशनल लेवल पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी, उसका कारण क्या है। देखिए, सीधी सी बात है कि जब हम पर्यावरण के बारे में एज ए होल बात करते हैं, जो आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का सिलेबस है, तो मुझे उसके तीन स्पष्ट भाग दिखाई पड़ते हैं। पहला तो पर्यावरण प्रदूषण का है, जो दूसरा है वो बायोडायवर्सिटी का है, और जो तीसरा है वो ग्लोबल वार्मिंग का है। ग्लोबल वार्मिंग, हालांकि ये सबके सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इन खासकर जो जैव विविधता और ग्लोबल वार्मिंग वाला टॉपिक है, यानी कि जिसे आप वैश्विक तापन कहते हैं, उसके केंद्र में या उसका जो कारण है वो पर्यावरण प्रदूषण ही है। लेकिन फिर भी ये पूरी तरह से पर्यावरण प्रदूषण के पर्याय नहीं है, इसलिए सिलेबस के तौर पर आप पर्यावरण प्रदूषण को भी पढ़ते हैं, फिर आप बायोडायवर्सिटी को भी पढ़ते हैं, और फिर ग्लोबल वार्मिंग को भी पढ़ते हैं, और आपको ये तैयारियां करनी ही है। अब इसमें जो बायोडायवर्सिटी है वह आपके लिए इस मायने में कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इससे पूरी की पूरी ये जो प्रकृति की श्रृंखला है वो जुड़ी हुई है। सामान्य तौर पर हमें लगता है कि ठीक है, कुछ प्रजातियां नष्ट हो जाएंगी तो उससे क्या हो जाएगा, लेकिन दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए एक जंजीर है, आप कल्पना कीजिए एक जंजीर है जिसमें 100 कड़ियां हैं, ये सारी की सारी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसमें से आप एक कड़ी को गायब कर दीजिए, अब क्या होगा सोच करके देखिए, तो आप पाएंगे कि वो पूरी की पूरी जंजीर कमजोर हो गई है, अब वो जंजीर रही नहीं गई है। ये पूरे के पूरी बायोडायवर्सिटी की जो थ्योरी है, या कह लीजिए कि इसका जो पिक्चर है, जो स्वरूप है, वो बिल्कुल इसी तरीके का है। इस पृथ्वी पर चाहे वो वनस्पति हो या जीव हो, छोटा से छोटा जीव हो जिनके बारे में हम नहीं जानते, वह जीव हो, यदि इस प्रकृति से गायब हो जाए तो आप यूं समझ लीजिए कि ये जो पूरी की पूरी श्रृंखला है, प्रकृति की जो पूरी की पूरी जंजीर है, उसमें से बीच की कोई एक कड़ी टूट गई है। अब उस कड़ी के टूट जाने से क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी सही मायने में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हो सकता है कि इतना ही प्रभाव पड़े जिसे आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो, या इतना बड़ा प्रभाव पड़ जाए जिसकी हम अभी तो अनदेखी कर रहे हैं, लेकिन आगे चल करके कोई महाविपत्ति का वो कारण बन जाए। इसीलिए बायोडायवर्सिटी हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। यानी कि बात हम बायोडायवर्सिटी की कर रहे हैं, लेकिन इनफैक्ट बायोडायवर्सिटी के माध्यम से हम बात पर्यावरण की ही कर रहे हैं। तो ये जो जैव विविधता है, ये जैव विविधता आप कह सकते हैं कि डार्विन के जो विकासवाद का सिद्धांत है उसके तहत निर्मित हुई। पहले एक चीज आई, फिर उसने दूसरी चीज को बनाया, फिर ये दोनों चीजों ने मिलकर के तीसरी चीज को बनाई, और इसके बाद तीनों के आपस में मिलने से पता नहीं कितनी सारी चीजें बनती गई, और हमें प्रकृति का वर्तमान स्वरूप दिखाई दे रहा है। और ऐसा नहीं है कि इस बायोडायवर्सिटी का महत्व हमारे लिए केवल इतना ही है कि हम इसके जरिए अपने पर्यावरण को बचा सकेंगे। इसके जो दूसरे बहुत इम्पॉर्टेंस है वो आप जानते हैं कि किस तरह से हमें हमारे यहाँ जो पूरा का पूरा वायु चक्र है, हमारी जो वनस्पतियां हैं वो किस तरीके से ऑक्सीजन छोड़ती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, और यही ऑक्सीजन हमारे जीवन का आधार है। हमारी अर्थव्यवस्था किस तरह से इस बायोडायवर्सिटी पर टिकी हुई है, मतलब पूरा का पूरा जो साइकिल नेचर में बना हुआ है वह बायोडायवर्सिटी के कारण ही बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आप सोच करके देखें कि बायोडायवर्सिटी में अगर कोई भी तत्व नष्ट हो रहे हैं, कोई भी जीव कहना चाहिए, तत्व नहीं कहना चाहिए, तो हमारे लिए कितनी बड़ी चिंता का कारण है। तो दोस्तों, पिछले अंक में जो मैंने आपसे बात की थी उसके तहत हमने देखा था कि किस तरीके से जो 0 डिग्री अक्षांश है वहाँ सबसे ज़्यादा बायोडायवर्सिटी है। इसके ऊपर जैसे जैसे हम चलते चले जाते हैं बायोडायवर्सिटी की संख्या कम होती चली जाती है। तो कैसे इस बायोडायवर्सिटी की हम रक्षा करें, इसको लेकर के अलग अलग तरह के विचार आए हैं, लेकिन कुछ विचारों के मामले में लोग बिल्कुल निश्चित हैं, और वो ये है कि जहां बायोडायवर्सिटी सबसे ज्यादा है उन क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाना चाहिए, जो बहुत स्वाभाविक भी है, सबसे ज्यादा फोकस उन्हीं पर किया जाना चाहिए। तो जब ये विचार आया कि फोकस किन पर किया जाए और ऐसे क्षेत्रों पर हम फोकस करें जहां बायोडायवर्सिटी सबसे ज्यादा हो, तो अब आप खुद विचार कीजिए कि वो क्षेत्र कहाँ हो सकते हैं। अगर आपके सामने वर्ल्ड मैप दे दिया जाए और केवल जितनी बातें मैंने अभी तक बायोडायवर्सिटी के बारे में आपसे की हैं उतनी कह दी जाए, तो क्या आप उस पूरे के पूरे मैप पर, जो बिल्कुल ब्लैंक है, नक्शा बना हुआ है लेकिन स्थानों के नाम नहीं है, क्या अपनी पेंसिल से निशान लगा सकेंगे कि वो कौन कौन से क्षेत्र होंगे जहां बायोडायवर्सिटी सबसे ज्यादा मिलेगी और उनके रक्षा की बात की जाएगी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बायोडायवर्सिटी की जब आप तैयारी करेंगे तो उसमें आपको एक बड़ा खूबसूरत चैप्टर पढ़ने को मिलेगा, मुझे वो नाम बहुत अच्छा लगता है, और वह नाम है मेगा डाइवर्सिटी कंट्री। मेगा डाइवर्सिटी कंट्री हिंदी में इसका अनुवाद किया गया है महाविविधता राष्ट्र। यहां जो विविधता है, यहां वो विविधता है बायोडायवर्सिटी की विविधता, लेकिन अंग्रेजी में भी बायो शब्द नहीं है और हिंदी में भी नहीं है, यह सीधे सीधे इसी रूप में लिखा जाता है महाविविधता राष्ट्र। तो जहां भी आपको महाविविधता राष्ट्र पढ़ने को मिले तो आप समझ जाइएगा कि ये जो विविधता है ये बायोडायवर्सिटी की विविधता से संबंध रखता है, मनुष्यों की विविधता से नहीं, धर्म संस्कृति की विविधता से नहीं। मेगा डाइवर्सिटी कंट्री, तो अब आप इसे यूं कह लीजिए कि अगर आपसे कहा जाए कि इस पूरे के पूरे नक्शे पर आप मेगा डाइवर्सिटीज कंट्री वाले क्षेत्रों को चिन्हित कीजिए, तो क्या आप कर सकते हैं? डेफिनेटली आप कर सकते हैं। पिछली बार भी मैंने अपने एपिसोड की समाप्ति एक प्रश्न के साथ की थी, लेकिन इस बार मैं प्रश्न के साथ नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप थोड़ा सा अगर अपने दिमाग पर दबाव डालेंगे तो आपका दिमाग आपको इसका उत्तर देगा, और बेहतर होगा कि अब इतना सुनने के बाद आप थोड़ी देर के लिए मेरे लेक्चर को बंद कर दें, थोड़ा इस पर विचार करें, मैप ले आएं अपने सामने, एटलस ले आएं और उस पर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि ये जो मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज हैं ये कहाँ पर होंगे, और जब आपका ये काम पूरा हो जाए तो आप फिर से मेरे इस लेक्चर को सुनें और देखें कि आपने सही निशान लगाए हैं या नहीं लगाए हैं। ठीक है, यहां मैं आपसे दो बातें स्पेसिफिकली कहना चाहूंगा। एक तो आप कॉमन तरीके से लगा लीजिए कौन से मेगा डाइवर्सिटीज कंट्रीज होंगे सामान्य तौर पर, लेकिन जो आइडेंटिफाई किए गए हैं उसके लिए बकायदे दो पैमाने बनाए गए, मुख्य रूप से दो पैमाने बनाए गए कि हम किन्हें महाविविधता वाले राष्ट्र मानेंगे। उसमें जो पहला पैमाना था वो ये था कि उस देश में कम से कम 5000 स्थानिक पौधे होने चाहिए, 5000 स्थानिक पौधे, एंडेमिक प्लांट। अब आप देखिए कि शब्द आ गया एंडेमिक प्लांट, आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, लिख भी आएंगे, लेकिन मालूम होना चाहिए कि ये एंडेमिक प्लांट क्या है, स्थानिक पौधे क्या है। मूलतः ये जो स्थानिक पौधे हैं दोस्तों, ये उन पौधों को कहा जाता है, स्थानिक जीव भी होंगे तो उनको कहा जाता है, जो केवल वहीं पाए जाते हैं, और वहां इसलिए पाए जाते हैं कि वहां की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वो हवा हो, पानी हो, जो कुछ भी है, सारी चीजें, तापमान है, वर्षा है, यानी जिनसे वनस्पति और जीव का विकास होता है, वो बिल्कुल वहीं के ही हैं, उन्हें बाहर से नहीं लाया गया है, केवल वहीं होते हैं। तो कम से कम 5000 ऐसे स्थानिक पौधे होने चाहिए। उसकी जो दूसरी पहचान है वो ये है, उस देश की सीमा समुद्र को स्पर्श करती हो। अब ये थोड़ा सा आपको उटपटांग सा लग रहा होगा कि समुद्र के स्पर्श करने से क्या मतलब है, इसलिए क्योंकि अगर समुद्र की सीमा से उस देश की सीमा स्पर्श नहीं करेगी तो समुद्र के अंदर तो बहुत बायोडायवर्सिटीज है ना, आप देखिए कि समुद्र के अंदर जीव हैं और किस किस तरह के कोरल्स हैं और क्या क्या नहीं है, इसका मतलब है कि उसके यहां ये सब चीजें हैं ही नहीं। तो अगर ये चीजें भी उसमें शामिल की जानी है तो सीधी सी बात है कि समुद्र तो हो आपके पास, तो ये दो इसकी शर्तें हैं। अब आप देखिए, होता यह है कि जब किसी भी राष्ट्र को महाविविधता राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा तो स्वाभाविक है उसको तो कोई इंटरनेशनल एजेंसी घोषित करेगी, और ये जो कंसर्न है वो किसी एक देश का कंसर्न नहीं है कि भारत को घोषित कर दिया गया है तो भारत देखे, अमेरिका को कर दिया गया है तो अमेरिका देखे, नॉट एट ऑल। वो तो फिर एक इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है ना कि पूरी दुनिया देखे उसके बारे में, तो फिर आपको फंड मिलेंगे, आपको टेक्नोलॉजी मिलेगी, आपको पूरी दुनिया का सहयोग मिलेगा उस पर, तब जाकर के आप सही मायने में उसका संरक्षण कर पाएंगे। तो इस तरह से यदि किसी भी राष्ट्र को मेगा डाइवर्सिटी कंट्री घोषित किया जाता है तो उसके फेवर में होता है। तो ये पैमाने बनाए गए प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से, ये जानकारी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही देखिए कि इसकी इसके लिए एजेंसी बकायदे बनाई गई है, दो एजेंसीज हैं इसकी, एक तो कंजर्वेशन इंटरनेशनल है और जो दूसरी एजेंसी है वह इंटरनेशनल नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम्स वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, बड़ा लंबा नाम है ना। ये दो एजेंसीज हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कंजर्वेशन इंटरनेशनल और यूनाइटेड नेशंस। अब यूनाइटेड नेशंस है ना, देखिए यूएनओ की एजेंसी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम्स वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, ये दो इसके बारे में फैसला करती हैं कि किसी देश को महाविविधता राष्ट्र घोषित किया जाए या नहीं किया जाए। अब आपकी सुविधा के लिए मैं फटाफट उन राष्ट्रों के नाम बता देता हूं। देखिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के सबसे ज्यादा राष्ट्र इसमें है, 6 राष्ट्र दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के हैं और इन्हें आप बकायदे अब मैप में आइडेंटिफाई कीजिए, कोलंबिया, ब्राजील, मैक्सिको, पेरू, इक्वेडोर और वेनेजुएला। ये 6 देश हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के, यानी कि यहाँ सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है। इसके बाद फिर एशिया शुरू हो जाता है, एशिया के 5 देश हैं और आपको इस बात का फक्र होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि भारत में भी उनमें से है। भारत को महाविविधता राष्ट्र घोषित किया गया है, क्यों है आगे चल करके हम देखेंगे। तो भारत, चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस, ये 5 देश हैं। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के 2 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी। इसके बाद अफ्रीका के 3 देश हैं, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मेडागास्कर और दक्षिण अफ्रीका। और इसके बाद जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसका एक राष्ट्र है, वो है अमेरिका। और देखिए अमेरिका बहुत ऊपर चला जाएगा जब आप एक इक्वेटर के उसको देखेंगे, लैटिट्यूड के हिसाब से, अक्षांश के हिसाब से तो अमेरिका काफी ऊपर है, लेकिन उसको ये दर्जा इसलिए मिला है क्योंकि उसका भौगोलिक क्षेत्र बहुत बड़ा है। तो भौगोलिक क्षेत्र बहुत बड़ा होने के कारण ये जो 5,000 की शर्तें हैं, 5,000 स्थानिक पौधे की, वो पूरी कर लेता है और समुद्र तो है ही, तो उसे भी फिर महाविविधता राष्ट्र का दर्जा दिया गया है। तो देखिए अब अगर आपने निशान लगा लिए हो तो मैंने जो आपको लिस्ट बताई है आप देखिए वो कहाँ उसी के आसपास है या नहीं है, और अगर आपने ऐसा कर लिया है तो आपको अपनी पीठ थपथपानी चाहिए, और अगर ऐसा आपने किया है तो मेरी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। तो अब आज के लिए बस इतना ही, आप सब मेरा अभिवादन स्वीकार करें, नमस्कार।